ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात पेश आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इत्तेफाक इंसान के साथ पेश आते हैं, मुश्किलात होती हैं, कुछ अच्छा वक्त होता है, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हम अपनी अच्छाइयों को कभी मत भूलें, अपनी अच्छाइयों को, अपनी अच्छी आदात को कभी मत भूलें। इसलिए कि दुनिया अगर बुरी हो गई है या आपके साथ कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से जो है आप जो है परेशान हैं, कभी ये मत सोचें कि अगर मतलब मेरे साथ ये ऐसा वाकया पेश आया है, अगर मेरे साथ बुरा हो गया है या ज़िंदगी में जो है थोड़ी सी सख्ती मेरे साथ आ गई है, तो ये मत सोचें कि जी मुझे भी जो है बुरा हो जाना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को हमेशा अपने पास संभाल के रखें, बेशक जितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, बेशक बड़े से बड़ा इम्तिहान ही अल्लाह ताला आपसे क्यों ना ले, और हमेशा जो है अपना इरादा जो है मजबूत रखें। जो आपके मकासद हैं ज़िंदगी में उन पे हमेशा कोशिश करें, जो आपने कोशिश करनी है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उन मकासद के लिए उनको करते रहें, बेशक रास्ता किसी तरह का भी क्यों ना हो। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं और आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। हैं का मतलब ये है कि मेरे साथ हसन भी हैं यहाँ पर। जी हसन,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। नाज़रीन, मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की सुबह भी आप लोगों ने मुकम्मल ताजगी के साथ शुरू की होगी और एक या ज़बरदस्त नाश्ता कर रहे होंगे, जो यकीन हम लोगों को याद रखेंगे नाजरीन हम लोग के। हम एक चीज़ हम बताते चलेंगे, हम और खुर्रम इसके बाद स्कूल जा रहे हैं, जैसे इसको ये जो है पांचवी जमात में, मैं पहली जमात
ये
में।
नया यूनिफॉर्म जो है आया है आजकल स्कूलों में जो है इस तरह के चेक का पारा, मैं जो है सीनियर क्लास में, इस वजह से जो है मेरे जो रंग जो आपको नजर आ
थोड़े ज्यादा सोबर
संजीदे किस्म का। हाँ जी बिल्कुल। बहरहाल नाजरीन को ये बताता चलूँ कि हमारा हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो चल रहा है कि बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए, और उसमें इस हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है झूठ से कैसे छुटकारा पाया जाए, और इस पे जो है आप लोग भी बात करें, हम भी बात करेंगे, और हमारे जो माहरीन आते हैं टेलीफोन लाइन पे या हमारे स्टूडियो में उनसे भी इंशाल्लाह इस मौजू पे हम लोग बात करेंगे।
बिल्कुल, ऐसा मौजू है कि बहुत मुश्किल होता है। एक बार खुर्रम, बहुत आदतें पड़ जाती हैं। कोई बता रहे थे साहब वाकया कि एक साहब जाते थे हर दफ़ा वो एक किसी महफिल में मजलिस में वो जाके नया जूता एक उठा लेते थे, क्योंकि उनका एक बार जूता उठा लिया गया था वहाँ से, तो वो हर दफ़ा जाके बेहतरीन जूता चुन के आते थे वहाँ से और सबका उठा के वो लाते थे। तो इसमें ये चीज़ दिखाती है कि अगर कोई चीज़ आदत हम लोगों की पड़ जाए उसका छुटकारा उससे हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल।
बिल्कुल सही बात की, और हाल जूता उठाने की जहाँ तक बात है शायद उसमें इतनी ज़्यादा आदत ना हो, लेकिन झूठ बोलने में और एक और जो चीज़ कहाई जाती है कर्ज लेने में, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को इनका मज़ा आ जाए, यानी मनफी मज़ा जो है, तो बंदा इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता।
बहुत अच्छा खुर्रम, ये कर्ज लेने की बात तुमने की, इसमें एक चीज़ थी कल एतवार से रेडियो में लगाए हुए था, सुन रहा था, उस पर आ रहा था कि कर्ज देने का सवाब
जी जी
किसी की मदद करने से ज़्यादा होता है, ये आपको मालूम था?
अच्छा, यानी
ये ऑफिशियली ये चीज़ मौजूद है हम लोग के अहादीस में। उसकी वजह ये है कि जो आपसे मांग रहा है ऐसे ही मांग रहा है, हो सकता है उसको जरूरत ना हो, लेकिन जो कर्ज मांग रहा है उसको यकीनन जरूरत है, उसको कोई मुश्किल है, आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका सवाब है बनिस्बत इसके कि आप किसी की ऐसे ही खाली खाली मदद करें।
बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की अभी नाज़रीन को आपने ये बात बता दी, और इंशाल्लाह जो है जो लोग बहरहाल जिन पे जो है वो अल्लाह ताला ने बहरहाल हम सब पे अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें भेजी हैं, बहरहाल जिनको जो माली लिहाज से अल्लाह ताला ने ज़्यादा बरकतें दी हैं तो वो जो है जितनी कर सकते हैं दूसरों की मदद जिन लोगों को
करनी चाहिए
करेंगे। अच्छा हसन, यहाँ पर आपने वो जूते उठाने वाली बात की, तो उसमें ये भी मैं बताते चलूँ कि जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमें जो है ये नहीं देखना चाहिए कि जिंदगी ने मेरे साथ क्या किया है, अगर आपके जूते उठा लीजिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये जो है ये बहाना बनाते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ था तो मैं भी यही करूँगा अगर हाँ। और या ये कि मसलन जो है हसन जो है वो ये काम करता है तो मैं भी करूँगा।
मैंने नहीं किया, मैंने
नहीं, मिसाल दी है मैंने, मैंने कहा हसन दो हसन टू जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो बहरहाल ये बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए हमें, इत्तफाकन जो है अच्छाइयाँ देखनी चाहिए वो लेनी चाहिए भाई।
बिल्कुल,
बुराई की क्या जरूरत है।
एक बहुत ही अहम रास्ता है जो हम लोगों की पुरानी दास्तानें उनसे इबरत हासिल करना और उनसे सीखना, और एक बहुत ही अहम शख्सियत है तारीख में मिलती है वो है बहलूल दाना। तो एक प्रोग्राम उसके बारे में हम लोग अभी दिखाने जा रहे हैं।
दास्तान कहानी देखते हैं और देखते हैं उसमें आखिर में क्या नतीजा निकलता है। चलते हैं दास्तान देखते हैं। जी नाजुन, आप लोगों ने बहलूल दाना की दास्तान सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वक्त हुआ है हमारे पास गुफ्तगू के सेगमेंट का और हम लोग जाएंगे हसन के पास ताकि हसन हमें बताएं कि आज कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किस मौजू पे गुफ्तगू होने वाली है। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। आज एक बहुत ही ख़ास मौजू हम लोग लेकर आए हैं। वैसे थोड़ी उसमें इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे, लेकिन शुरू में मैं ये बताता चलूँ कि आजकल के दौर में नाजरीन एक बहुत ही अहम चीज़ है, इल्ज़ाम भी उसी के सर सबसे पहले आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी उसके बारे में कही जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी पर लोग भरोसा करते हैं और वो है मीडिया।
मीडिया
मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया होते हैं, ज़राए ब्लाग होते हैं कि आप उन पर भरोसा बाज़ वक्त कर सकते हैं, बाज़ वक्त नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने चंद महीने पहले कहा था खुर्रम के हमेशा जो भी आदमी जो भी न्यूज़ ले, जो भी खबर ले, वो ऐसी जगह से ले जहाँ से उसको मुकम्मल तौर पर एतबार हो कि ये सही न्यूज़ किसी चीज़ के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं वो सही ज़रिए ब्लॉग से लेना चाहिए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही अजीज़ मेहमान हैं आज हम लोगों के पास, जनाब गुलजम्मस हुसैन। और मैं ये बताता चलूं कि इनका ताल्लुक़ मीडिया से है और बहुत ही खुद जर्नलिस्ट हैं, तो इस सिलसिले में हम काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इस सिलसिले में इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू करेंगे। और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
अच्छा हुसैन साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा शुरू में ही वो ये है कि मीडिया है क्या चीज़।
वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, मीडिया का आगाज़ हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तकरीबन 400 साल पहले, तो उसके साथ ही मामूली अखबारात का आगाज़ हुआ है। तो ये नॉलेज की, इल्म की एक तरसील का सिलसिला है। पहले जो इंफॉर्मेशन इतलात या जो इल्म है कुछ लोगों तक महदूद होता था, मसलन बादशाहों। और आप हमेशा याद रखें जो पावर है ना, जो कुदरत है, ताकत है, वो है इंफॉर्मेशन में, वो है ख़बर में। जिसके पास जितनी ज़्यादा खबर होगी, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, वही उतना ज़्यादा पावरफुल है, उतनी ज़्यादा उसकी ताकत है। जब बादशाहों का ज़माना होता था तो सारी जो कुदरत होती थी, ताकत होती थी, वो बादशाहों तक होती थी। क्यों? बादशाहों ने अपना ख़बर निगारी का एक सिलसिला रखा हुआ होता था, वो मुख्तलफ उसकी सल्तनत के हिस्सों से ख़बरें लाते थे, तो सारी इतलात पहुंचती थी सल्तनत तक, एक महल तक महदूद थी। क्यों? कुदरत का सरचश्मा या मरकज़ वही महल होते थे। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया और दूसरी ईजादात आई, इसके साथ अखबारात का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये जो ताकत बादशाहों तक महदूद होती थी ये वहाँ से निकलनी शुरू हो गई, आवाम तक हो गई। आते आते मसलन 20वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो अखबारात बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत। और फिर 1930 और 40 के दरमियान जब टेलीविज़न शुरू हुआ है ज़्यादा, तो इस दौरान जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो उससे बहुत बड़ा ना मीडिया का एक्सप्लोजन हुआ है। जो पावर है, जो ताकत है, वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। जब लोग भी उन सारी बातों के बारे में जो पहले सिर्फ बादशाहों का हक समझा जाता था वो जानने लगे, तो कुदरत जो है उनके पास भी चली गई। तो ख़बर ये है, मीडिया ये है कि ये है इतलात और नॉलेज।
जी,
और जब ये बादशाहों तक महदूद था तो पावर उन तक थी, जब ये लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया तो कुदरत जो है, जो ताकत जो है, वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। तो ये एक ताकत है, इल्म एक ताकत है, इल्म का ही ये एक सिलसिला है। तो ये मेरे ख्याल में आसान सी इसकी डेफिनेशन ये
जी
हो
इसमें सकती। ये था कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, अब अगर थोड़ा और पीछे जाएं 15 साल पहले, इससे ज़्यादा नहीं, एक ख़ास तबके के पास मीडिया उसके हाथ में था कि वो जो जी चाहे लोगों को दे।
जी,
अब लेकिन उसकी काफ़ी हद तक तारीफ चेंज हो चुकी है। वो जो यानी उसे कहा जाता था मीडिया एक न्यूज़ सोर्स या मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की जो होती थी वो कुछ लोगों के हाथ में होती थी, हम कह सकते हैं 1990 की दहाई के अवासर तक ये चीज़ देखी गई। उसके बाद लेकिन हालात काफ़ी तब्दील हो गए और सोशल मीडिया काफ़ी हद तक आगे आ गया। इसमें जो जिस मौजू की तरफ हम लाना चाह रहे हैं वो ये है कि एक तो सोशल मीडिया की अहमियत, और सबसे एक अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं यानी बहुत सारे लोगों के दिल की बात कहने जा रहा हूँ, वो ये है कि आम हालात में कहा जाता है कि फलां जो है बेगुनाह है, मगर ये कि इसके बरखिलाफ़ कोई चीज़ साबित हो जाए,
जी
मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग झूठे हैं, मगर ये इसके बरखिलाफ़ कोई चीज़ साबित हो जाए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं यकीनन। और तो इसको यानी इस चीज़ को कैसे समझा जाए, लोगों को कैसे भरोसा होना चाहिए उस पर?
जी, उससे पहले मैं हसन ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो मीडिया है ना, जो आपने कहा कि पहले अथॉरिटी थी, दुनिया भर में कहीं भी असल में जो कौमी टेलीविज़न होते थे, नेशनल टेलीविज़न स्टेशन, उनकी इजारादारी थी, और कुछ ममालक में तो अभी भी है। आपको पता है, तो जिन लोगों ने अपनी सोसाइटी को ज़्यादा खोला है, ज़्यादा ओपन किया है, उनमें प्राइवेट चैनल्स की इजाज़त मिली है। और ख़ुद हमने पाकिस्तान में देखा है कि 100 के करीब चैनल्स हैं, और उसमें से 30 न्यूज़ चैनल्स हैं। हिंदुस्तान में देखा है कि 1000 के करीब चैनल्स हैं, तो ये एक्सप्लोजन हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ममालक में अभी भी वही पॉलिसी चल रही है कि गवर्नमेंट के चैनल्स हैं, पूरी उनका कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन पर। मसलन सऊदी अरेबिया में कहीं प्राइवेट चैनल्स का उस तरह का वजूद नहीं है, तसव्वुर नहीं है, जो हम देखते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या दूसरी जगहों में। तो ये तो यहाँ तक है। दूसरा जो आपने कहा ना कि ये मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, और
बिल्कुल
इस तरह असल में ये सिलसिला ज़्यादा तक मुंसलिक था सनसनीखेजी में, जो येलो जर्नलिज्म जिसको कहा जाता है। जब तक अखबारात के तीन तीन एडिशन शाया होते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को, तो उन्होंने अखबार किसी सुर्खियों के तहत बेचना होता था, कुछ खबर के तहत बेचना होता था। अब एक दिन में कितनी खबरें आ जाएं, उसी खबर को सनसनी फैलाने के लिए वो ऐसा रंग देते थे या ऐसा मौजू देते थे, या बाज़ वक्त टोटल बिल्कुल आप सही कहते हैं झूठ पर भी मबनी शाया कर देते थे कि उनको अपने बेचने से सरोकार था। तो इस वजह से मीडिया बदनाम हुआ है। बाद में जब टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स का दौर आया, इसमें भी कंपटीशन शुरू हुआ, तो इसमें भी, और देखें सबसे पहली जो सोर्स होता है वो कहते हैं न्यूज़ में, वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए न्यूज़ की और चैनल्स की, ये सारे असूल जो सहाफ़त में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब कंपटीशन शुरू हुआ तो ये पहले खबर शाया करने का सिलसिला है और दौड़ है, इसमें ये क्रेडिबिलिटी चली गई। ये खबर एक मसा, अब खबर कैसे देते हैं, मसा आप सुने कि मुशर्रफ का केस लगा हुआ है अदालत में, तो अदालत में सहाफ़ी बैठे हैं, वहाँ से मोबाइल पर बीप कर रहे हैं, वहाँ से बीप कर रहे हैं, ये एक कॉमेंट दे दिया मसा, एक हो गया, उसी कमेंट पर खबर कौन बना रहा है? उसके पास तो टाइम ही नहीं है जो अदालत में बैठा है कि खबर बनाए, वो बीप भेजेगा न्यूज़ रूम में, न्यूज़ रूम में वो उसकी खबर बनाएंगे, हो सकता है वो बीप को मिसअंडरस्टैंड कर जाए और उसी तरह फौरी खबर के तौर पर ना वो शाया हो जाएगी, चल पड़ेगी। तो इस दौरान सोर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। खबर का सिलसिला जो था इस तरह था कि अव्वल सोर्स क्रेडिबल हो, फिर जो रिपोर्टर है वो खुद आए, खुद खबर भेजे, खुद मुरतब करे, उसको कंपोज किया जाए, भेजा जाए। लेकिन इस दौड़ ने ना बदकिस्मती से ये जो कंपटीशन का दौड़ थी, इसने ना इसको नुकसान पहुंचाया बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ।
हम लोग गुफ्तगू इस सिलसिले में जारी रहेगी क्योंकि बहुत ही हसास मेरे ख्याल में जगह तक पहुंच गई है। फिलहाल चलते हैं खुर्रम के पास और एक ब्रेक लेते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोग गुफ्तगू जारी रहेगी। थोड़ा सा ताज़ा दम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग, ये जो गुफ्तगू का हमारा सेगमेंट है और यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, और कुछ जो है बातें हसन की तरफ से हो रही हैं, कुछ बातें हमारे मेहमान की तरफ से हो रही हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं, हमें जो है बताएं फेसबुक के ज़रिए, कॉल करके या एसएमएस करके। मैं और इस वक्फे में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स का, सवालों का, और आप लोग क्या कहते हैं इस मौजू के बारे में उसका। फेसबुक पे यहाँ पर लाइव हूँ, चलते हैं हसन के पास ताकि हसन गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी हसन,
हम लोगों का एक यानी रास्ता है रब्ता बरकरार करने का फेसबुक, और facebook.com/SUT Morning Show हम लोगों का एड्रेस है फेसबुक के ऊपर, उससे आप हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, या हमारे यानी ये जो सब टाइटल की शक्ल में हम लोग फ़ोन नंबर्स देते हैं उससे आप रब्ता बरकरार कर सकते हैं। उससे माफ़ कीजिए, कैमरा मुझे नहीं मिल रहा था। गुलजमस हुसैन साहब, फिर से मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। एक जो यानी बहुत ही हसास चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, क्रेडिबिलिटी या यानी जो ज़रिए ब्लाग है उसका सही होना, ये न्यूज़ उसका यानी सोर्सेज जो उसके हैं वो बिल्कुल सही हो, तो इसका 100 चैनल आपने बताया कि पाकिस्तान में, इसी तरह 1000 चैनल्स हिंदुस्तान में, इनमें से हम कहें कि अगर 30% भी न्यूज़ के होंगे, खुद बहुत ही बड़ी तादाद होती है, बहुत ज़्यादा। आप सोचिए 300 चैनल्स हिंदुस्तान में और 30 चैनल्स तकरीबन पाकिस्तान में, पता कैसे चले कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है?
اصل میں نا حسن یہ بہت بڑا بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ عوام جو ہوتے ہیں, جو ویورز ہوتے ہیں, بالآخر سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی کریڈیبلٹی ہے کس کی نہیں ہے, اور ٹائم کے ساتھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. مثلا ایسی چھلنی ہے, اس چھلنی میں سے گزرتے گزرتے جب کچھ سال, اور جب اور ایک اور بات دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز نئی نئی آتی ہے نا, اس میں بہت ساری برائیاں بھی آ جاتی ہیں, بہت سارے پرابلمز بھی آ جاتے ہیں, جس طرح الیکٹرانک میڈیا میں ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عوام جب دیکھتے ہیں, عوام بھی پہلے کچھ چیزوں سے ساتھی چیزوں سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب ایک وقت گزرتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چینلز کی خبریں جو ہیں مسلسل غلط آ رہی ہیں, یا مسلسل ان میں دروغ کا یا غلطی کا جھوٹ کا ہاں جی ایک دخل ہے, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ سوئچ آف کر جاتے ہیں, اس چینل سے اس کو سوئچ آف کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دوسری طرف. تو ایسے ہوتا رہا ہے. اور پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے خود کہ بہت سارے چینل جن کا اور بہت سارے پروگرام کے بہت بڑے بڑے اینکر پرسن جو تھے مثلا, جن کے شروع میں بڑا نام تھا, لیکن جب احساس ہوتا چلا گیا لوگوں کو کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو جھوٹ پر مبنی خبریں دیتے ہیں, جو سکینڈلز دیتے ہیں, جو بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو, تو آہستہ آہستہ ان کی ویورشپ کم ہو گئی, ان کے دیکھنے والوں کی کمی آئی, اور اس کمی کے ساتھ ہی آتے آتے چینلز نے ان کو مثلا پیچھے ہٹانا شروع کر دیا, اور دیکھا کہ جب چینل کی کریڈیبلٹیز آ رہا ہے اس پر حرف آئے گا تو وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہوا ہے کہ وہ چینل جن کی زیادہ کریڈیبلٹی ہے وہی اوپر رہے ہیں, اور جو دوسرے ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے چلے گئے ہیں. اور ایسے یہ میرے خیال میں نا ایک نیچرل پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جب شروع میں کوئی بھی ٹیکنالوجی کو نئی آتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ خود صاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں.
بالکل.
اور آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مثلا بہت سارے نیوز چینلز دنیا میں جو گلوبل نیوز چینلز ہیں بہت سارے شروع ہوئے تھے, بہت بڑے بڑے نام تھے, لیکن ان میں آج اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہیں جو ٹاپ پر ہیں, بی بی سی ہے, سی این این ہے, یا الجزیرہ ہے, یا کیوں ہے, یہ اس ایسی بات نہیں ہے یہ خبریں جھوٹ پر نہیں دیتے, نہیں یہ دیتے ہیں, ان کا پروپوگنڈا بھی ہے, ان کا سب کچھ ہے, ان کے مثلا اپنے عزائم بھی ہیں, اس میں بھی سارا کچھ شک ہے, لیکن یہ ایسے سورس انتخاب کرتے ہیں یا ایسی انہوں نے کریڈیبلٹی ڈیولپ کیا, یہ پکڑے نہیں جاتے کسی طرح سے, ایسی وہ اوتھینٹسٹی اس میں پیدا کی ہے, تو لوگوں نے مثلا دوسرے جو ہے ہٹا دیے ہیں آہستہ آہستہ, جو گلوبل چینلز میں نیوز کے چینلز ہیں ان میں یہ ٹاپ پر رہ گئے ہیں, اور اسی وجہ سے, اور بی بی سی کو میں خاص کر کہوں گا کہ وہ اسی وجہ سے نا میرے خیال میں بی بی سی کی کریڈیبلٹی جو ہے سی این این سے اور دوسروں سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ کبھی پکڑے نہیں گئے, اگر وہ جھوٹ بھی بولیں گے تو اس طرح دلائل کے ساتھ اور اس طرح مثلا, اور اس کو جھوٹ نہیں ہوگا, ٹوسٹ کریں گے اپنے اینگل سے, اپنے اینگل سے, یہ ایک نیا انداز ہے ان کا, نیا سلسلہ ہے.
تو یہ سلسلے میں یعنی کافی حد تک کام ہو رہا ہے کہ مختلف طریقوں سے اپنے سچ کو ثابت کیا جائے.
جی,
تو اس میں جو ہے اب بالفرض ہم کہیں کہ ایک ہم نے نیوز چینل ڈھونڈ لیا کہ بالکل سچ بول رہے ہیں, بالکل, تو میرے خیال میں تو کم ہی ہوں گے, لیکن بہت تعدادوں کی کم ہوگی, لیکن ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً ہم لوگوں کا نوجوان جو نسل ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے میڈیا سے.
صحیح,
مختلف قسم کے میڈیاز ہیں, چاہے وہ ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, کم اب تو ریڈیو کا کردار بہت کم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال گاڑی کے حد تک ریڈیو آن کر لیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے یعنی صحیح طور سے ایک میڈیا کا کردار ہونا کیا چاہیے اگر ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, ایک یعنی مشرقی ویلیو اور اسلامی ویلیو کے صورت میں.
یہ تو بڑا کلیئر ہے حسن کہ میڈیا کا کردار ہے تعلیم اور تربیت. یہ مثلا ساری زندگی آپ بچے تو نہیں رہتے, ساری زندگی آپ نوجوان تو نہیں رہتے.
بالکل,
پہلے آپ اسکول میں جاتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ تعلیم کا ساری عمر درسگاہوں میں تو جاری نہیں رکھ سکتے, لیکن یہ سلسلہ ساری عمر جاری رہنا چاہیے.
جی,
اس کا یہی اس کا سب سے جو بہترین سورس ہے وہ میڈیا ہے, وہ اخبار کی صورت میں, وہ ریڈیو کی صورت میں, وہ ہو ٹیلی ویژن کی صورت میں. اخبار جو ہے اس ایک زمانے میں مثلا 10 سال پہلے 15 سال پہلے اخبار کی بہت زیادہ اہمیت تھی, ابھی بھی ہے کچھ لوگوں میں, اب بھی کچھ ریگولرلی اس کو پڑھتے ہیں, باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, بالکل ابھی بھی اس کا ایک رول ہے, ایک ہے, لیکن اس سے آگے پھر سلسلہ اس سے کچھ پہلے اس دوران سوری ریڈیو کا بھی شروع ہو گیا, اور ریڈیو بہت آسان ہے, اس تک رسائی آسان ہے بہت زیادہ, اسپیشلی آپ نے جیسے کہا کہ جب آپ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, مثلا ریڈیو آن کرنا اور سننا جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے.
جی بالکل.
اور اپ ڈیٹ رہنے کا بھی, خبروں کے بارے میں بھی, نالج کے بارے میں بھی, ہر چیز ہم نے یہاں تہران میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح زیادہ, ساری وہ خبریں دیتے ہیں اور سب سے اہم جو خبریں ہیں ریڈیو کو جس نے زندہ رکھا ہے وہ یہی انہی چیزیں ہیں کہ وہ فوری خبر پہنچاتے ہیں اور کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے.
جی.
اور اس کے بعد ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن آپ ظاہر ہے وہ اس زیادہ اس کی آسانی سے گھر میں دیکھ سکتے ہیں, گھر میں بچوں کے ساتھ اور بیٹھ کر سارا. تو یہ تو اس کا رول تو وہی ہے, تعلیم اور تربیت. اور اس میں ہونا کیا چاہیے, اس میں کچھ تعلیم و تربیت یہ تو صحیح ہے لیکن کچھ پرابلمز آئے ہیں. مثلا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پرابلمز آتے ہیں, آہستہ آہستہ پرابلم جو ہے سارٹ آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
جی.
اور اس میں سے جو بہترین چیزیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں. میڈیا میں بھی ابھی ٹیلی ویژن کے سب سے جو امپیکٹ کر رہا ہے نا لوگوں کو, صرف نوجوان طبقے کو نہیں, بچوں کو, نوجوانوں کو, گھر میں بیٹھی خواتین کو, سب سے زیادہ میرے خیال میں خواتین کو, کیونکہ ان کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے گھر میں.
جی,
تو وہ سب سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتی بھی ہیں اور بچوں کا بھی زیادہ ان کے ساتھ گزرتا ہے, اور بچوں کو میرے خیال میں نوجوانوں سے بھی زیادہ بچوں کا اور خواتین پر ٹیلی ویژن اثر کرتا ہے. تو ان کا اثر ہوتا ہے, ان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس میں پرابلمز آئی ہیں, یہاں پر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے سچویشن کو نا, بہت سارے ٹیلی ویژن چینلوں نے مارننگ شوز میں مثلا بڑے بڑے مسئلے آئے ہیں. مارننگ شو جو ہیں, آپ نے جیسے بتایا کہ خبر ایک گفتگو کے دوران آپ سے ہو رہی تھی, تو یہ زیادہ گھریلو خواتین کے لیے ہوتا ہے.
جی بالکل.
جی, دانش نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے, بچوں کے لیے ہوتا ہے. اس میں بڑے مسئلے آئے ہیں. اس میں سب سے جو بڑے مسئلے اس کا زیادہ تو تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں ان کی انفارمیشن کو, ان کے نالج کو, جو پریکٹیکل لائف کے بارے میں ہے, جو زندگی کے بارے میں ہے, جو جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ ظاہر آپ ساری عمر تو نہیں جا سکتے یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں. تو اس میں جو کوالٹی ہے نا پروگراموں کی, وہ میں سمجھتا ہوں کم ہوئی ہے. وہ اب تو میں نے سنا ہے کہ باقاعدہ جنوں اور پریوں کے قصے سنائے جاتے ہیں اور جن نکالے جاتے ہیں مارننگ شوز میں. جی, پاکستان میں تو ایسا ہو رہا ہے. وہ ایک میں چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اس پر ایک شو ہے, اس میں صبح آپ کو وہ جن نکالنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ اب جن جو ہے یا کسی میں آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے, یہ ساری دنیا کا مسئلہ تو نہیں ہے.
دیواروں میں لکھا رہتا ہے نا ماہر عملیہ, تو ٹی وی کے حد تک کافی اپنا کام
انہوں نے
بڑھا دیا.
ٹیلی ویژن اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ انٹرسٹنگ تو ہے, لیکن اس کے بس مسائل پیدا ہو رہے
ہیں,
لوگوں تک کیا پہنچ رہا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں واقعی یہ جن جو ہے ان کا وجود ہے اور نکل رہے ہیں اور اس میں یہ گرپ میں لے لیتے ہیں. یعنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جو نا مثلا سطحی نالج ہے لوگوں کا,
وہ صرف ان تک پہنچائی جا رہی ہے,
ان تک پہنچایا جا رہا ہے.
یہ ہم لوگ ایک وقفہ معاف کی جگہ لیں گے, پھر ہم لوگ آئیں گے, چلتے ہیں خرم کے پاس.
بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی, لیکن معاف کیجیے گا, چھوٹا سا ایک وقفہ لینا ہے, تھوڑا سا طرف تازہ ہو کے ہم لوگ آتے ہیں باہر کی اسٹوڈیو کے باہر کی ہوا لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ جو دلچسپ قسم کی گفتگو جینوں وغیرہ کی چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. جی ناظرین, اور امید کرتے ہیں آپ لوگ تر و تازہ ہو گئے ہوں گے, چلنا ہے ہمیں اپنی گفتگو کی طرف. لیکن میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا, اور وہ سوال جو ہے یہ ہے کہ کافی جو ہے مائنر سا سوال ہے, آپ لوگوں کی بحث جو ہے بہت بڑے موضوع پہ چل رہی ہے, لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ آیا کہ اخلاقیات میڈیا میں, ایک چیز میں صرف پوچھوں گا مختصر سی, اور وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کا جو امیج ہے وہ ایسا خوبصورت دکھایا جاتا ہے ہمارے ڈراموں میں, فلموں میں, خاص طور پہ اگر ہالی ووڈ کا نام ہے لیتے ہوئے بالکل شرماؤں گا نہیں, کیونکہ بہرحال اس پہ ایک فلم خود بنی ہے کہ کیسے ہالی ووڈ نے تقریباً 1970 یا 80s میں خود یہ ایک پروسیس چلایا, تحریک چلائی تھی کہ کیسے سگریٹ نوشی کو ایسے دکھایا جائے کہ سگریٹ, اور یہ چیز جو ہے ہمارے جوانوں کو کھائی جا رہی ہے.
یہ بہت اچھا سوال کیا इन्होंने बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। इस सिगरेट नोशी का अकेला नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इसका मैं सबसे पहले बताता हूँ, इसके पीछे सिगरेट जो है एम्पायर्स हैं, मैं उनको कंपनियाँ नहीं कहूँगा, वो तो मल्टीनेशनल एम्पायर्स बन गई हैं।
जी बिल्कुल।
तो मल्टीनेशनल एम्पायर जो है ना सिगरेट की, वो फंड करती हैं इन सारी चीज़ों को। ऐसे नहीं है, ये चीज़ें आसमान से नहीं आती या अचानक नहीं दिखाई जाती, पूरा फंड किया जाता है, उस फिल्मों को फंड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप सोचें, आपने देखा है कि जो सिगरेट की कंपनियां हैं वो नौजवानों की क्रिकेट टीमों को पाकिस्तान और इंडिया में क्यों स्पॉन्सर करती हैं? क्यों? यही वो सिलसिला है, यही वो जगह है जहां से उनको वो चाहते हैं कि हम टारगेट करें
अपने।
हाँ जी, यही रास्ता है। तो वो मुख्तलिफ बहानों से एंटर होते हैं और फिर रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया में तो और बहुत सी बुरी चीज़ें भी हो रही हैं इसके अलावा भी। मैं हैरान रह गया कि पेप्सी जो है, पेप्सी वो इस तरह दिखाते हैं कि एक एडवर्टीज़मेंट में देख रहा था कि जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनमें मसा एक कहानी के तौर पर वो डिवेल्प करते हैं, दिखाते हैं कि जो बच्चे पेप्सी पीते हैं वो किस तरह स्मार्ट हो जाते हैं, ज़िंदगी में कैसे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो लस्सी पीते हैं या दूध पीते हैं वो कैसे मोटे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बरक्स है,
बिल्कुल बरक्स।
मैं आपको हैरान होगा, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ, वो बड़े ना स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट नहीं है बल्कि वो कमज़ोर हैं। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया मोटे होने का, कि कैसे होना चाहिए। उसकी डाइट में आप हैरान होंगे कि उसने जो पेप्सी की मकदार है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हमने रिज़ल्ट देखे हैं, एक साल में वो मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो उसका 15 किलो वज़न बढ़ा है। और डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा सबसे जो ज़्यादा रोल था वो गज़ा के नहीं था, वो पेप्सी का था।
और ये सारे
जी
इसके
जी जी, जी और इसके जो बुरे असरात दूसरे हैं हेल्थ पर वो तो हैं, लेकिन एक ये है। अब आप देखें जो हमारे यहाँ, क्योंकि कमर्शियल सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, क्योंकि जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग इकोनॉमी है जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो खुली, उसको छूट दे दी गई है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, हुकूमतें उनके हाथों में हैं। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि ये जो चीज़ें हैं, मसलन जो पेप्सी है, जो कोका कोला है, ये मशरूबात जो हैं, या जो दूसरे हमारे जो फास्ट फूड्स की हैं, पिज्ज़ा है मसलन, पिज्ज़ा हट है या मैकडोनल्ड्स है, या
नाम आपने ले
जी ओके बिल्कुल ओके, ये जो चीज़ें हैं मसलन, ये जो है ये इस गज़ा के लिए, जब इसको प्रमोट किया जाता है, और जो हमारी ट्रेडिशनल गज़ाएँ हैं उनको मसलन समझा जाता है कि ये जो हैं ये सेहत के लिए उस तरह मुअसर नहीं है या उस तरह मज़ेदार नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल बरक्स है,
बिल्कुल
जो हमारे माशरे की जो हमारी जो रवायती गज़ाएँ हैं, मेरे ख्याल में तो उसका मुकाबला कहीं भी नहीं हो सकता। या ख़ुद अपने ईरान में देखा है कैसी कैसी मज़ेदार और लजीज जो हैं वो खाने तैयार होते हैं, इनका तो कहीं मुकाबला ही नहीं है उनके पास। तो इसके अलावा मतलब बर्गर्स के अलावा या पिट्सों के अलावा तो कोई और चीज़ ही नहीं है,
चीज़ ही नहीं है। चीज़ इसके बारे में एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले चलते हैं खुर्रम के पास, और वो अपने बहुत ही अहम चीज़ है।
जी मैं आप लोगों का थोड़ा सा वक्त लूँगा और उसके बाद जो है आप लोगों को दोबारा जो है कैमरा आपके हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक जो जैसे मैंने सवाल पूछा उसी तरह का जो है एक मौजू भी मैं लेके आया हूँ, और वो है सिगरेट नोशी के बारे में। कहा जा रहा है कि यूरोप और अमरीका के अंदर जो है सिगरेट की जो कीमत है उसको 3 बराबर उस पर टैक्स लगाने का एक प्लान किया जा रहा है। और इसमें हसन एक जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स जो बढ़ाया जाएगा 3 गुना इसको कर दिया जाएगा, तो 200 मिलियन अमवात से बचा जा सकता है। यानी सालाना 200 मिलियन अमवात ये सिगरेट नोशी 22-23 अमवात की किसी भी सूरत में, वो कैंसर हो सकता है, वो और भी, क्योंकि सिगरेट कोई, आप अगर मेडिकल साइंस में किताब पढ़ें उसकी तो आपको पता चलेगा कि हर बीमारी जो है उसमें उसका एक रिस्क फैक्टर, जो एक वजह जो है उस बीमारी की, वो सिगरेट नोशी होती है। बहरहाल ये बात यहाँ पर लिखी हुई है और उसमें लिखा गया है कि इसकी वजह से जो है तकरीबन 60% जो है कीमत जो है इसकी सिगरेट की वो ऊपर चली जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं अपने नाज़रीन की खिदमत बताते चलूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप 90% लोग जो 40 साल की उम्र से पहले सिगरेट नोशी को छोड़ देते हैं उनमें जो है कैंसर का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर सिगरेट कोई पी भी रहा है तो कोशिश करें कि 40 साल की उम्र से पहले पहले उसको छोड़ दें। उसके अलावा यहाँ पर हसन एक और जो चीज़ लिखी है वो ये लिखी गई है कि सालाना जो इंटरनेशनल टोबैको की जो कंपनी है वो 30 बिलियन पाउंड कमाती है। 30 बिलियन पाउंड जो है बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और कहा जा रहा है कि जब ये टैक्स इस पे लगा दिया जाएगा जो 3 गुना कर दिया जा रहा है इस टैक्स को, अगर इसी मिकदार से लोग सिगरेट को ख़रीदते रहेंगे तो इसमें जो है तकरीबन 240 बिलियन पाउंड का इनके जो इनको फ़ायदा होता है उसमें जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स टोबैको कंपनी में जो है उनको तो फ़ायदा होगा अगर इसी मिकदार से लोग इस्तेमाल करते रहें सिगरेट को, कम ना हो तो इसी वो जो है वो चलता रहेगा। और एक और जो यहाँ पर दिलचस्पी लिखी है वो ये लिखी हुई है कि अमरीका के अंदर हर 10 खवातीन में से एक खातून जो है वो दिन में एक सिगरेट पीती है। तो ये जो है बहरहाल जो चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली बड़ी अजीबोगरीब किस्म की थी, मैंने कहा अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश की जाए। बहरहाल यहाँ पर सिगरेट नोशी की जो है मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए और दुआ करते हैं हम कि इसकी जो है कीमत ऊपर जाए, और ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि टोबैको की कंपनी उसको फ़ायदा हो, इसके ऊपर कीमत ऊपर जाने का फ़ायदा ये होना चाहिए कि हम लोग जो है सिगरेट नोशी को छोड़ दें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बात करेंगे कुछ पीने की चीज़ों के बारे में और वो उसमें जो है सर फहरिस्त जो कहा जाता है सबसे पसंदीदा तरीन जो ड्रिंक है वो है कॉफ़ी का पीना। कहते हैं कि 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सुबह कॉफ़ी के बगैर अपने दिन का आगाज़ नहीं कर सकते। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसमें एक जो चीज़ कही जाती है कि ये कहा जाता है कि 400 मिलीग्राम कैफीन का अगर आप दिन में इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो है मैक्सिमम लिमिट कहा जाता है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 400 मिलीग्राम का मतलब यह है तकरीबन 4 कप कॉफ़ी के दिन में पीना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में 1000 मिलीग्राम कैफीन का इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में जो माहिर नफ्सियात हैं और जो जो इनके डॉक्टर्स हैं जो इंटरनल मेडिसिन के, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपनी नींद को भगा सकें। बिल्कुल बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कि जब जो है नींद जो है ज़्यादा ना आए, अलबत्त वो उनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल उस पर तरीके पर उसको इस्तेमाल कर सकें, ये इस्तेमाल ऐसा है कि कोई ख़ास बीमारी हो तो उसमें तो, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग 1000 मिलीग्राम कैफीन ले रहे हैं दिन में वो बिल्कुल जो है खतरनाक उसकी वैल्यू है और वो एडिक्शन में शामिल होती है। और यहाँ पर एक बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिन का आगाज़ अगर वो कॉफ़ी उनको ना मिले तो वो अपने दिन का आगाज़ नहीं कर सकते, वो उनको ऐसे लगता है कि जो है हमारी जो है दिन जो है वो शुरू ही नहीं हुआ। कुछ जो मनफी असरात कॉफ़ी की वजह से होते हैं उसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि सूरत का हमारी जो फेस है चेहरे का जो है उस पर सुर्खी आ जाना, हमारे जो पट्टे हैं उनमें जान ना रहना, ये मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जो 1000 मिलीग्राम कैफीन दिन में लेते हैं। और उसके अलावा कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद अगर आप हर रोज़ 1000 मिलीग्राम कैफीन पी रहे हैं ले रहे हैं कुछ अरसे के बाद आपकी ज़बान में लुकनत भी आ जाती है, आप जो है एक जुमला
काम ही
जी का आप जी बिल्कुल नहीं पियेंगे तो ज़ाहिर बात है क्योंकि वो एडिक्शन है तो वो आपको जो है ये मसले, और नींद का ना आना, दिल की धड़कन के मुश्किलात हैं और ये बहरहाल ये सारी चीज़ें कुछ एक जो कुछ अच्छी असरात भी हैं कॉफ़ी के उसमें जो है एक चीज़ सरफहरिस्त जो आती है वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास कोलोन का कैंसर है जो आंतों का कैंसर है उससे कॉफ़ी जो है आपको बचाती है, और जो पार्किंसन की बीमारी से जो लोग डरते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वो अगर 400 मिलीग्राम तक कैफीन का इस्तेमाल करें कॉफ़ी पिएं तो वो पार्किंसन की बीमारी में मुबतला नहीं होंगे, लेकिन 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल ख़तरनाक है। चलते हैं हसन के पास दोबारा जो है आप लोग
सबसे अहम चीज़ इसका मतलब है कि यानी एक मियाना रवि और एतदाल इसमें रखना, तो 1000 न रखना 100 भी न रखना 400 ठीक है बीच में इंसान चले। गुलजामस हुसैन साहब एक तो मैं पूछना चाहूँगा, अभी खुर्रम ने बात की सिगरेट की बात की
जी जी,
आपने ड्रिंक्स की बात की, मुख्तलिफ फास्ट फूड्स ये सब मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँच रही है और उसको इतनी खूबसूरत शक्ल में पेश किया जा रहा है कि हम ऐसा मुतासर होते हैं कि उसी रात को अगर हम ना पहुँच जाएँ तो कम है। उसी की दुकान में, या भाई वो चीज़ इस्तेमाल ना करना शुरू कर लें, जैसा कि आपने कहा उसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पेश किया जा रहा है।
जी
हम एक आम से आदमी कैसे समझें कि ये जो है हमारे लिए मुफीद ये चीज़ें बता रहा है या गैर मुफीद चीज़ें, और हमें इसकी बात नहीं मानना चाहिए, इतने सारे न्यूज़ सोर्सेस?
ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत मुश्किल है और इसका हल भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे प्रोफेसर ने ना हमें एक दफ़ा बताया कि एक ज़माना था कि जब डॉक्टर्स आते थे टेलीविज़न पर, वो आके कहते थे जो देसी घी है ये दिल की बीमारियां पैदा करता है, ये दिल की बीमारी के लिए, दिल के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इससे जो है जो आपके दिल को खून देने वाली जो वेन्स हैं उनको ब्लॉकेज हो जाती है, ये डॉक्टर्स आके कहते थे। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर व्यूअर्स हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, घरेलू ख़वातीन देख रही हैं या मर्द देख रहे हैं, वो कैसे इस बात को ना समझें, कैसे इस पर एतमाद ना करें जब डॉक्टर्स आके आपको टेलीविज़न पर ये बता रहे हों? तो लोगों ने इस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पता चला कि डॉक्टर्स को पे किया जाता था इस सिलसिले में, और बाद में पता चला कि ये दिल की जो नालियां हैं जो जो नज़दीक जब पड़ती हैं, जब नज़दीक हो जाती हैं तो वो वेन्स इतनी बारीक हैं, और दूसरी जो खून लाती हैं जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन है उनमें जो आखिरी तह तक, पाँव तक, हाथों की उंगलियों तक खून लेके जाती हैं और वापस आती हैं, ये आखिर पर इतनी बारीक हो जाती हैं कि अगर ये इसमें से वापस आने का जो सबसे आसान सिलसिला है वो यही है कि आपकी ग़ज़ा में देसी घी का इस्तेमाल हो या उसी तरह की दूसरी अशिया का, जो दूसरी हैं मैन्युफैक्चर्ड जो ऑयल्स हैं या मसलन जो डालडा जिसको हम ज़्यादा कहते हैं उधर जो है, ये जो है ये ब्लॉकेज पैदा करती हैं और आखिर में आप इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है हार्ट की डिजीज़ पैदा करता है और दूसरी चीज़ें पैदा करता है। तो ये पता चलने में को 15-20 साल लग गए, तो उस वक्त तक नुकसान तो हो गया था। तो जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी पावर तो है, इनका असर तो है, वो इतना पैसा खर्च करती हैं। अब इसका सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि यहाँ असल में आता है, रोल आता है जो प्रिंटिंग प्रेस का, अखबारात का, इनकी मैगजीन्स का और दूसरी चीज़ों का। ईरान में हमने देखा है ये बहुत पावरफुल रोल अदा कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा कर रहा है वो, ऐसा आपको पूरी इत्तलात देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ उस तरह की कंज्यूमर सोसाइटी नहीं बनी जो पाकिस्तान और इंडिया में बनी है, वहाँ जो बन चुकी है उस तरह की नहीं बनने दी इन्होंने, मल्टीनेशनल कंपनियों का उस तरह की कंपनियों के अजारादारी नहीं कायम होने दी। तो ये जब खबरें होती हैं वो फिर जो वालदेन हैं वो बच्चों को बताते हैं, जो खुद बच्चे पढ़ते हैं देखते हैं फ़र्क देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पेप्सी की उस तरह की मांग नहीं है जिस तरह की जो है लस्सी की है और दूसरी जो है ट्रेडिशनल जो मशरूबात हैं उनकी है।
जी बिल्कुल।
उसकी उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि लोगों को प्रॉपरली गाइड किया गया है,
यानी लोगों में
आगाही पैदा की गई है। और वहीं आपके ना मॉर्निंग शोज का भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो रोल अदा हुआ है इस सिलसिले में वो आपको हैरानी की बात होगी, वो मॉर्निंग शोज का है, क्योंकि मॉर्निंग शोज जो है ना घर में
बिल्कुल हम लोगों का खत्म हो गया है और बस यानी चंद सेकंड के अंदर हम लोगों को जाना है। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम लोग जारी रखेंगे और एक चीज़ मैं नाज़रीन बस जल्दी से बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते से ये काम करेंगे कि हफ्ते में जो मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स आएँ, चाहे वो मीडिया की शक्ल में या मीडिया के तवसुत से और जो पैगाम मीडिया के ज़रिए पहुंचना है, गुलजामा हुसैन साहब इंशाल्लाह वो पेश करेंगे आपकी खिदमत में और इस मौजू पे भी इंशाल्लाह तफसील से फिर से गुफ्तगू करेंगे, ख़त्म नहीं हुआ है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन, और मैं जो है हमारे जो मेहमान आज आपने बात की हुसैन साहब ने मीडिया के मौजू पर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए,